आज हम 1984 के एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा। अब हो सकता है इसके लेखक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को कुछ लोग जानते हों, कुछ ना जानते हों,
बिल्कुल।
लेकिन इस दस्तावेज में लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन को लेकर कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज भी उतनी ही जरूरी है।
सही बात है। ये मार्च 1984 में पूज्य गुरुदेव ने अपने सबसे समर्पित लोक सेवी कार्यकर्ताओं को दिया था, पर यह सिर्फ एक निर्देशों की लिस्ट नहीं है।
अच्छा,
ये एक तरह का घोषणा पत्र है, एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि किसी बड़े सामूहिक लक्ष्य को पाने के लिए एक व्यक्ति को पहले अपने अंदर क्या बदलना होता है।
तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि एक बड़े उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह की तैयारी और मानसिकता की जरूरत होती है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले विचार से होती है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये योजना लिखने वाली उंगलियां, कलम या कागज इसे पूरा नहीं करेंगे,
हाँ,
बल्कि इसके पीछे कोई दिव्य सत्ता है जो प्रेरणा दे रही है। यहां तक कि अगर लिखने वाला शरीर न भी रहे तो भी काम नहीं रुकेगा।
और यहीं पर जो बात आकर्षक है वो है अहंकार को, पहले ही कदम पर पूरी तरह से खत्म कर देना।
बिल्कुल।
जब कोई लीडर ये कहता है कि प्रेरणा का स्रोत मुझसे भी बड़ा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, तो व्यक्तिगत श्रेय लेने की भावना ही खत्म हो जाती है। ये पूरी टीम को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक तरीका है।
एक मिनट, ये दिव्य सत्ता वाली बात कुछ लोगों को बहुत आध्यात्मिक या शायद अव्यवहारिक लग सकते हैं। क्या हम इसे आज की भाषा में समझ सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं।
क्या ये वही है जिसे आज हम फ्लो स्टेट या क्रिएटिव इंस्पिरेशन कहते हैं? जैसे जब कोई कलाकार कहता है कि ये आइडिया मेरे जरिए आया, मैंने इसे बनाया नहीं।
हाँ, ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप इसे बिल्कुल उस तरह देख सकते हैं। ये उस अवस्था की बात है जब आपका मैं, आपका अहंकार पीछे हट जाता है और एक बड़ी चेतना काम करने लगती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं, आप सब की समन्वित शक्ति का नाम ही वो व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है।
अच्छा,
यानी वो कह रहे हैं कि मैं कोई अकेला इंसान नहीं, बल्कि आप सब की मिलीजुली ताकत का ही दूसरा नाम हूँ।
ये एक शक्तिशाली विचार है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर कोई नेता खुद को सबकी समन्वित शक्ति मानने लगे, तो क्या वो अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही से, गलतियों से ये कहकर बच सकता है कि ये तो समूह की चेतना थी?
देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, लेकिन यहाँ इसका मतलब जवाबदेही से बचना नहीं, बल्कि श्रेय का विकेंद्रीकरण करना है।
अच्छा, क्रेडिट को बांटना।
हाँ, जब कोई लीडर ऐसा कहता है तो वो हर कार्यकर्ता को ये महसूस कराता है कि तुम भी इस मिशन के उतने ही मालिक हो जितना मैं। ये जिम्मेदारी को कम नहीं करता, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देता है।
ठीक है, तो अगर प्रेरणा का स्रोत कोई दिव्य शक्ति है और काम करने वाली ऊर्जा सबकी मिलीजुली है, तो फिर इंसानी कोशिश, हमारी अपनी योग्यता और साधनों का क्या महत्व रह जाता है?
बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ एक बहुत मजबूत उदाहरण दिया गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप ना करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए वे हनुमान जी का उदाहरण देते हैं।
हनुमान जी का उदाहरण तो अक्सर दिया जाता है, इसमें नया क्या है?
नया है उनके चित्रण का तरीका।
आहा,
आमतौर पर हम हनुमान जी को जन्म से ही दैवी शक्ति से भरावा देखते हैं, लेकिन यहाँ पूज्य गुरुदेव उन्हें योग्यता और शिक्षा की दृष्टि से समुदाय में अकिंचन यानी साधारण बताते हैं।
अकिंचन साधारण। हाँ,
जिनका अतीत एक भगोड़े राजा सुग्रीव की नौकरी में बीता था। ये एक बहुत ही जमीनी और यथार्थवादी चित्रण है। ये हमें याद दिलाता है कि महान बनने से पहले वे भी एक साधारण स्थिति में थे।
ये तो हमारी हीरो वर्शिप की आदत के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हम तो सोचते हैं कि महान लोग पैदा ही महान होते हैं।
सही बात है।
लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जब हनुमान जी सच्चे मन और पूर्ण समर्पण से श्री राम के काम में लगे, तब उनके अंदर से समुद्र लांघने और पर्वत उठाने जैसी असंभव शक्तियां प्रकट हुईं।
बिल्कुल।
यानी समर्पण ने क्षमता को जन्म दिया।
एकदम। संदेश यही है कि किसी मिशन के लिए आपका पिछला जीवन या आपकी फॉर्मल डिग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका वर्तमान समर्पण और निष्ठा। हनुमान का उदाहरण इसलिए चुना गया क्योंकि वे शक्ति और बुद्धि के साथ साथ निस्वार्थ सेवा और अहंकार शून्यता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि हर कार्यकर्ता हनुमान जैसा बने,
जिसके काम में कोई कमी ना हो पर जिसका कोई अहंकार न हो।
हाँ,
एक मिनट, यहाँ ये कहा जा रहा है कि योग्यता से ज्यादा समर्पण जरूरी है, लेकिन क्या ये विचार थोड़ा खतरनाक नहीं है? क्या हम किसी को सिर्फ इसलिए एक मुश्किल काम दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत समर्पित है, भले ही उसमें काबिलियत ना हो? इससे तो पूरे मिशन का ही नुकसान हो सकता है।
ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब भी इसी दर्शन में छपा है। यहाँ काबिलियत को नजरअंदाज करने की बात नहीं हो रही है,
तो फिर?
बल्कि ये कहा जा रहा है कि काबिलियत का असली स्रोत क्या है। ये दस्तावेज मानता है कि सच्चा समर्पण एक चुंबक की तरह है।
अच्छा,
ये न केवल आपके अंदर छिपी हुई योग्यताओं को बाहर खींचता है, बल्कि जरूरी साधनों और सही लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करता है। ये समर्पण को इंजन की तरह देखता है।
मतलब अगर इंजन मजबूत है तो वह अपने लिए पहिए और रास्ता बना ही लेगा।
बिल्कुल, ये अयोग्यता का उत्सव नहीं है, ये समर्पण की शक्ति में अटूट विश्वास है।
ठीक है, चलिए मान लिया कि समर्पण सबसे जरूरी है, तो इस समर्पण को एक्शन में कैसे बदला जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में एक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए?
हाँ, तो इस दस्तावेज में कुछ ठोस निर्देश दिए गए हैं। मानसिकता को आकार देने के लिए कुछ सूत्र हैं।
जैसे कि?
पहला है, विश्राम की बात ना सोचें, और दूसरा, जो समर्पण भाव लेकर आए थे उसमें कमी ना आने दें, बल्कि उसे रोज बढ़ाते रहें। यहाँ अहर्निश शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी दिन रात।
अहर्निश, इसका मतलब सिर्फ ओवरटाइम काम करना तो नहीं हो सकता? उससे तो कोई भी थक के चूर हो जाएगा।
नहीं नहीं, ये सिर्फ घंटे गिनने की बात नहीं है। अहर्निश का मतलब है कि मिशन आपका डिफॉल्ट स्क्रीन सेवर बन जाए।
स्क्रीन सेवर?
हाँ, जब भी आपका दिमाग खाली हो वो अपने आप मिशन के बारे में सोचने लगे। ये एक जुनून है, नौकरी नहीं। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ काम और जीवन एक हो जाते हैं।
बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आनंद की तरह।
सही।
और फिर विनम्रता पर बहुत जोर है। कहा गया है, स्वयं को अधिकाधिक विनम्र बनाए और दूसरों को बड़ा माने। स्वयं सेवक बनने में गौरव का अनुभव करें। ईमानदारी से कहूं तो ये आज की पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ प्रमोशन वाली दुनिया के तो बिल्कुल खिलाफ जाता है। आज तो हर कोई खुद को बड़ा साबित करने में लगा है ना?
और शायद इसीलिए आज टीमों में इतना टकराव और बिखराव है। ये विचार संगठनात्मक एकता का रहस्य है। जब हर कोई श्रेय लेने के बजाय सेवा करने पर ध्यान देता है तो आपसी ईर्ष्या की संभावना कम हो जाती है।
सही बात है।
और जब आप स्वयं सेवक होने में गौरव महसूस करते हैं तो आप किसी पद या पहचान के मोहताज नहीं रहते। आपका गौरव आपके काम से आता है, आपके पद से नहीं।
ये तो सर्वेंट लीडरशिप के सिद्धांत जैसा है जिसके बारे में आज बड़ी बड़ी कंपनियां बात करती हैं।
बिल्कुल, विचार नया नहीं है, बस पैकेजिंग नहीं है।
इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, लक्ष्य के बारे में। दस्तावेज कहता है कि लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि अगर निशाना पूरी तरह ना भी लगे,
हाँ,
तो भी जहां तक पहुंचोगे वो अद्भुत, अनुपम और ऐतिहासिक होगा।
हाँ,
ये तो एक तरह से असफलता के डर को ही खत्म कर देता है।
बिल्कुल, ये चांद पे निशाना लगा और सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे वाली बात है। इसका मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि ये टीम को हार के डर से आजाद कर देता है।
तो आप बड़े प्रयोग करने से नहीं डरते?
हाँ, बड़े जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि पूरी निष्ठा से की गई कोशिश अपने आप में एक जीत है। ये मानसिकता इनोवेशन को जन्म देती है।
तो समर्पण, निरंतरता, विनम्रता और एक बहुत ऊंचा लक्ष्य, ये मानसिकता की एक पूरी रूपरेखा है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हम इंसान हैं, रोज एक जैसा मोटिवेशन रखना, रोज विनम्र बने रहना, ये तो लगभग नामुमकिन है। उत्साह तो कम होता ही है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है?
हाँ, और यही इस दस्तावेज का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। इसे बनाए रखने के लिए अंत में एक रोजाना अभ्यास दिया गया है।
एक अभ्यास?
हाँ, जैसे आप एक तरह की अग्नि परीक्षा या इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं। ये रोजाना आत्मनिरीक्षण का एक अभ्यास है।
अच्छा, तो आखिर में एक तरह की डेली चेकलिस्ट दी गई है। इसमें कुछ सवाल हैं जो हर कार्यकर्ता को रोज अपनी अंतरात्मा से पूछने हैं।
हाँ।
पहला सवाल है, जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही? अरे, ये तो परफेक्शन की मांग है, क्या ये मुमकिन है?
देखने में ये परफेक्शनिस्ट लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग है। इसका मकसद अपराध बोध पैदा करना नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता बढ़ाना है।
अच्छा,
ये सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप परफेक्ट क्यों नहीं थे। ये पूछ रहा है कि क्या आपने पूरी ईमानदारी से अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल किया। ये परिणाम के बारे में नहीं, नियत और प्रयास की शुद्धता के बारे में है।
ठीक है, और दूसरा सवाल है, आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया? और तीसरा, अनुशासन में कोई कमी तो नहीं हुई?
ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात है।
लेकिन चौथा सवाल शायद सबसे मुश्किल है, कहीं अपने कामों को दूसरों से ज्यादा समझने का अहंकार छिपकर तो नहीं आ गया? इसमें छिपकर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अहंकार कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वो चुपके से दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। खासतौर पर जब आप कोई अच्छा या सेवा का काम कर रहे हो तो ये अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, मेरे बिना यह काम हो ही नहीं सकता,
मेरी सलाह सबसे अच्छी होती है।
हाँ, ये सब उसी छिपे हुए अहंकार के लक्षण हैं। ये रोज का सवाल उस अहंकार पर एक टॉर्च की तरह है जो उसे अंधेरे में छिपने नहीं देता।
और यहीं पर शायद इस दस्तावेज की सबसे गहरी बात कही गई है, ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं।
बिल्कुल।
और ऊंचाई किसी की लंबाई या पद से नहीं, बल्कि श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता से आती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि युग परिवर्तन जैसा बाहरी लक्ष्य हासिल करने से पहले व्यक्ति को अपने अंदर के व्यक्तित्व का परिवर्तन करना होगा।
आपने सार पकड़ लिया। बाहरी मिशन और आंतरिक विकास, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक अधूरे या अहंकारी व्यक्तित्व के साथ एक ऊंचा काम स्थायी रूप से नहीं कर सकते।
यह एक चक्रीय प्रक्रिया है।
हाँ, आप बेहतर इंसान बनकर बेहतर काम करते हैं और बेहतर काम करके आप और बेहतर इंसान बनते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ये रोज की अग्नि परीक्षा है।
तो परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयव से अपेक्षा से हमने जो समझा, उसका सार यही है कि किसी भी महान लक्ष्य की नींव उसके कार्यकर्ताओं के चरित्र की मजबूती पर टिकी होती है। यह सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, बल्कि कैसा बनना है इसके बारे में है। साधन, योग्यता, रणनीति, ये सब अपनी जगह है, पर असली शक्ति समर्पण, विनम्रता और अहंकार शून्य सेवा भाव में छिपी है।
बिल्कुल, ये एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि एक महान लक्ष्य के लिए केवल बाहरी रणनीति ही काफी नहीं होती, बल्कि कार्यकर्ताओं की आंतरिक मजबूती और चारित्रिक ऊंचाई भी उतनी ही जरूरी है।
ये वाकई किसी भी संगठन, टीम या व्यक्ति के लिए एक कालातीत संदेश है जो कुछ बड़ा और सार्थक करना चाहता है।
और ये दस्तावेज भले ही एक विशेष समूह के लिए लिखा गया था, लेकिन ये हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है।
क्या?
क्या हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा काम हो या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी हो, इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत विकास को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़कर क्या हम अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों को भी असाधारण बना सकते हैं? ये विचार सोचने के लिए।